साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगणाललिता श्रीविशाखामृतंश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतेरी नमामि हरिप्रिये वनचरकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे
हरे कृष्णा वेरी ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी अमंगस्ट ऑल ऑफ यू हियर टुडे वेरी ग्रेटफुल to His grace, Sri Vallabha Prabhu, for having me serve all of you all in some small way while I'm in Dubai. It's quite an embarrassment and also very humbling experience to be sitting in association of His Holiness Bhakti Anugraha Janardhan Maharaj. I'm a small child in front of him, but it's just great.
No, you're bigger than me.
It's an honor and pleasure to be in front of all of you all. We have been hearing so much about the congregation of Damodar Desh, and we've been hearing so much about all the wonderful activities that you are doing here, in spite of all the challenges and in spite of the complicated situation in which the preaching is happening here. And it's now an honor and pleasure to be here amidst all of you all and having darshan of all of you all here. Today I'm going to speak this topic of the marriage of Sita and Ram. This section of the Ramayana is a part of the Ramayana which is right at the beginning, the Balakanda of the Ramayana. In fact, Ramayana is a book that is technically supposed to be, from one point of view, it is supposed to be the story of Lord Ram, Ramayana. Rama means Lord Ram.
Can I pause you for a second? Is there anybody who can't understand Hindi here today?
English.
Anybody who can't understand Hindi today?
That's me.
Maharaj is from Vrindavan, you will understand Hindi. So, anybody who can't understand Hindi in the audience?
Hindi samasta hai.
Okay.
Arey stam. Language change. Shri Vallabha Prabhu ki adesh se abhi hum Hindi mein pravachan karenge. Sita Ram. Ramayana ke Balakand ka jo ek prasang hai jiske bare mein hum charcha karenge. बताया जाता है कि रामायण का मतलब है राम का आगमन, राम की कहानी, राम की जो गाथा है उसको रामायण कहते हैं. लेकिन बहुत सारे आचार्य कहते हैं कि ये रामायण जो है एक्चुअल रामायण नहीं होना चाहिए था, सीतायण होना चाहिए था, क्योंकि ये कहानी जो है राम से ज्यादा सीता की है. और
अंदर हो गया
सीतायण मतलब है सीता देवी की कहानी है. तो कहते हैं कि इस रामायण का हर स्कंद जो है, हर कांड जो है वो सीता के इर्द गिर्द बन रहा है. जैसे बालकांड जो है सीता और राम की शादी का कांड है, अयोध्या कांड जो है सीता देवी राम के साथ वनवास जाती है, और अरण्य कांड जो है सीता देवी वन में कैसे निवास करती है और रावण उनको अवरण करके लेके आते हैं, किष्किंधा कांड जो है सीता देवी का तलाश, सीता देवी की खोज की कहानी है, सारे बंदर जो है सीता देवी की खोज में निकलते हैं, सुंदर कांड जो है हनुमान जी सीता जी को मिलते हैं और सीता जी को संदेश देते राम जी का, और युद्ध कांड जो है सीता वापस राम के साथ मिल लेती है। तो हर कांड जो है सीता के इर्द गिर्द बन रहता है, इसके लिए इस किताब का नाम होना चाहिए था सीता आयनम, या इसका नाम होना चाहिए था रमा आयन, रमा जो है सीता देवी का और एक नाम है, लेकिन वाल्मीकि जी ने इसका नाम रामायण क्यों कह दिया, क्योंकि वो पुरुष है तो पुरुष का नाम देव डाल दिया, राम का नाम डाल दिया, लेकिन अगर एक स्त्री ने नाम रामायण लिखा होता तो उसका जरूर नाम सीता आयन होता है, रमा आयन होता था, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। रामायण का जो केंद्र है सीता देवी है, और अभी हम जो कहानी की चर्चा करने वाले हैं वो सीता देवी के बारे में, सीता और राम का जो मिलन है उसकी कहानी है, और बताया जाता है कि क्यों हम भगवान के कल्याणम या शादी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि भौतिक दुनिया में शादी जो है वो एक हर व्यक्ति के जीवन का पीक है, सबसे महत्वपूर्ण समय, इसलिए है लोगों को शादी के समय सिंहासन में बिठाया जाता है ताकि उसको लगे कि वो बहुत ही ऊंचे पदवी पे हो, उसके बाद नीचे उतरना होता है और ग्राउंड लेवल पर आना पड़ता है, लेकिन हकीकत है कि शादी जो है सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो ये जो राम सीता का जो कहानी है, शादी की कहानी जो है, इसको सुनकर हमें क्या फायदा होगा? भौतिक दुनिया में जितने भी कहानियां हैं और जितने भी चीजें हैं, जब तक हमें कुछ फायदा नहीं होता कोई सुनता नहीं है, है नहीं। तो दुनिया में जितने कहानियां हैं प्रेम के, उससे हमें तो कुछ फायदा होता नहीं है उन कहानियों को सुन के, उन कहानियों के बारे में चर्चा करके, लेकिन सीता राम की कहानी है, उस कहानी को सुन के सबसे ज्यादा लाभ जो है हमें होगा, उन दोनों को होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमें जरूर होगा, इसलिए हम हर बार जो है सीता राम की कहानी सुनते हैं। और इतना ही, आप अगर आप तिरुपति जाएंगे, बालाजी मंदिर जाएंगे, तो हर रोज जो है श्रीनिवास कल्याणम होता है, श्रीनिवास जी का कल्याणम या शादी का मुहूर्त जो है पद्मावती देवी के साथ हर रोज होता है। क्यों? क्योंकि हर शादी से दुनिया को फायदा नहीं होता, वो पति पत्नी को फायदा शायद होता होगा, लेकिन भगवान और उनकी जो कॉन्सर्ट है, उनकी जो अंतरंग शक्ति है, वो दोनों जब मिलते हैं दुनिया को बहुत फायदा होता है। ये बैकग्राउंड है इस कहानी का। तो हम रामायण की कहानी इसके लिए चर्चा कर रहे हैं ताकि हमें राम और सीता की मिलन की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी की शुरुआत जो है मैं एक ऐसे प्रसंग से करना चाहूंगा जो इस कहानी का शीर्षक बनता है, एक्चुअली इंट्रोडक्शन बनता है। जब विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं अयोध्या से, तो दशरथ महाराज को कहते हैं कि मुझे एक यज्ञ करना है, और वो यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा है क्योंकि मारीच और सुबाहु दो राक्षस आके बहुत त्रस्त करते हैं हमें, तो राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए, क्यों? ताकि यज्ञ को संपन्न करें। लेकिन विश्वामित्र का एक्चुअल उद्देश्य था, हकीकत में उनका ये उद्देश्य था कि राम का सीता के साथ शादी कराए, लेकिन अगर पहले से बोल के लेके जाएंगे तो दशरथ महाराज बोलेंगे भाई मैं पिता हूं, तुम क्यों लेके जा रहे हो, मैं शादी कराऊंगा मेरे बच्चे की, तो विश्वामित्र शादी के बारे में बात नहीं करते। तो यज्ञ संपन्न होने के बाद मारे चुभाव को मार देते राम, और उसके बाद विश्वामित्र मुनि राम को मिथिला लेके जाना चाहते हैं, अयोध्या एक तरफ है मिथिला दूसरी तरफ है, तो यज्ञ हो गया, यज्ञ के बाद अयोध्या वापस लेके जाना चाहिए ओरिजिनल प्रॉमिस के मुताबिक, लेकिन उल्टा दिशा लेके जाना चाहते हैं विश्वामित्र मुनि, तो उसको उल्टा, राम को उल्टा दिशा लेके जाने के लिए उसको प्रेरणा देना पड़ेगा। अभी राम जो है नवयुवक थे, 12 साल के थे उस समय, जो यंग लोग है, नवयुवक लोग है, उनको प्रेरणा देना आसान नहीं है, है कि नहीं? आजकल जो नवयुवक है उनको प्रेरणा देने के लिए क्या क्या पावर मिलना होता है, एक प्रोग्राम में हराने के लिए वीजा खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उतना कुछ मिलेंगे तो लोग आएंगे प्रोग्राम में, देखेंगे। तो यहाँ पे राम को मिथिला लेके आने की बात हो रही है, तो विषम तरुणी एक तरकीब निकालते हैं, बहुत सुंदर तरकीब निकालते हैं। वो ये नहीं कहते मैं आपको मिथिला लेके जा रहा हूँ आपका शादी कराने के लिए, ऐसा बोलेंगे तो राम जी भाग्य बहुत सारे होते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि मिथिला में शिव धनुष है, शिव जी का धनुष है और उस धनुष का जो है यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को देखने के लिए, उस यज्ञ में भाग लेने के लिए मैं जा रहा हूं उधर, क्या आप आना चाहेंगे? तो राम तुरंत मान गए। अभी क्षत्रिय नवयुवक को शिव जी का बाण देखना है, उसके लिए क्या उत्सुकता होगा सोचिए आप। बाण जो है क्षत्रिय युवक को के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के तारीख में आप एक नवयुवक को प्रेरणा देना चाहेंगे एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए, उनको बोलना पड़ता है तेंदुलकर का बैट देखेंगे क्या, सचिन तेंदुलकर का बैट दिखेगा, वो देखने के लिए भाग के जाएंगे इतना दूर। तो उस समय कलयुग नहीं है, त्रेता युग की बात है, तो शुद्ध धनुष के बारे में बात हुआ था। तो राम जी मान गए, तो उतना दूर मिथिला तक लेके गए। मिथिला में पहुंचने के बाद राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि जो है मिथिला के अंदर प्रवेश किए। पता जाता है कि मिथिला जो नगरी है वो इतनी सुंदर नगरी थी, इतनी अच्छे तरीके से उस नगर को सजाया गया था कि जब राम और लक्ष्मण प्रवेश कर रहे थे नगर के अंदर, हर घर के ऊपर छत पे एक झंडा लहरता था। तो उस समय की बात है कि पहले सारे घरों के ऊपर झंडा होता था, क्योंकि वो झंडा जो है प्रतीक होता था भगवान का। तो मतलब उस घर के अंदर, हर घर के अंदर जो है निवास किसका है? भगवान का है, भगवान का निवास है। तो उस भगवान को केंद्र में रखते हुए झंडा ऊपर लगाते थे, तो हर व्यक्ति दूर से झंडा देखता था तो उसको भगवान की याद आती है। आज की तारीख में कोई झंडा नहीं लगाता है, डिश एंटीना लगाता है, क्योंकि हर घर के केंद्र क्या है? टेलीविजन है, टीवी महाराज, और सामने बैठ के पूजा करते हैं टीवी का दिन रात, है कि नहीं? तो नेचुरली ऊपर जो है क्या होगा? डिश एंटीना ही होगा, है कि नहीं? तो मिथिला नगरी में है जब राम और लक्ष्मण प्रवेश कर रहे थे, जैसे ही वो प्रवेश किए उन्होंने एक बहुत सुंदर चीज देखा, नगर की छत के ऊपर हर झंडा जो है लहर रहा है, और वो झंडा जब लहर रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि सारे झंडे जो है हाथ के समान है, किसी के हाथ के समान है, मिथिला नगरी के हाथ के समान है, और इतने सारे हाथों से मिथिला नगरी जो है राम और लक्ष्मण को बुला रहे अंदर, आइए आइए आइए, इतना सुंदर प्रतीत हो रहा था। तो जब राम लक्ष्मण नगर के अंदर प्रवेश किए तो मिथिला नगर जो है, मिथिला नगरी जो है बहुत ही प्रसन्न हो गई थी, क्योंकि इतने समय से उनके पास एक बहुत सुंदर जो है एक रत्न है जिसको देने की उत्साह है मिथिला नगरी को, लेकिन किसको दे, कोई काबिल व्यक्ति आ नहीं रहा था। वो अनमोल रत्न क्या था? सीता देवी। तो अभी मिथिला नगरी को लग रहा है कि फाइनली एक व्यक्ति आए हैं जो काबिल है इस रत्न को लेके जाने के लिए, इसलिए मिथिला नगरी जो है इतनी खुश हो गई, इतनी प्रभावित हो गई कि राम अंदर आ रहे हैं। तो जैसे ही वो राम लक्ष्मण और विष्णु में चलते हैं तो एक जगह जहां पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सुंदर आलिशान महल है, मिथिला का सबसे उत्तम महल का है, वो था सीता देवी का महल। और जब सीता देवी के महल के पास में जाते हैं तो राम और लक्ष्मण राम देखते हैं ऊपर, वहां पे बालकनी के अंदर से सीता देवी जो है झांकती है बाहर उसी समय, और सीता और राम पहली बार जीवन में इस अवतार में एक दूसरे को देखते हैं। और जैसे ही दूसरे को देखते हैं राम की नजरें सीता देवी की नजरों से मिल जाती है, और जैसे ही नजर मिलते हैं प्रेम हो जाता है,
बोलेंगे तो बॉलीवुड का मूवी लग रहा है
भी बॉलीवुड की मूवी को सारे आइडिया इधर से मिला, ये ओरिजिनल मूवी है, बाकी तो बाद में आया। तो जैसे ही सीता और राम का दर्शन एक दूसरे का होता है तो तुरंत वो दोनों जो है अपने हृदय को खो देते हैं। इसकी सुंदरता के लिए बताया जा रहा है कि इतने समय तक विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण चल रहे हैं और जब भी राम को कुछ ऐसा चीज नजर आता है जो समझ में नहीं आता है तुरंत विश्वामित्र मुनि को क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। जैसा शिव जी का एक हर्मिटेज आश्रम दिख गया तो उसके बारे में पूछने लगे, ताटक का दिख गई तो उसके बारे में पूछने लगे, तो हर चीज के बारे में पूछते रहते थे सवाल राम जी, क्योंकि उनका जो मन था वो बहुत ही सोचने वाला मन था, बुद्धि इतना तीव्र था, तो नेचुरली सवाल पूछते रहे कि नहीं। लेकिन इतने बड़े यात्रा में इतने सारे सवाल पूछे है, लेकिन अभी जब सीता देवी को देखा कुछ सवाल नहीं पूछा। क्यों? कुछ चीजों के लिए सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ चीजें जो है अपने आप में ही जवाब होता है, है कि नहीं? कुछ सवाल अपने आप में ही जवाब होता है। तो जब राम सीता देवी को देखते हैं इतने प्रभावित हो जाते हैं, तो इतने में विश्वामित्र मुनि निकल जाते हैं, तो अंत में राम पता चलता है कि विश्वामित्र मुनि निकल गए, तो वो भी निकल जाते हैं उधर से। जब मिथिला नगरी के प्रथम चौक में पहुंचते हैं, वहां पे जनक महाराज जो सीता देवी के पिताजी थे और जनक मिथिला के राजा थे, वो वहां पे पहुंचते हैं अपने गुरु के साथ जिनका नाम है सतानंद ऋषि। तो जब सतानंद ऋषि के साथ जनक महाराज वहां पे पहुंच जाते हैं तो विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण का दर्शन होता है। जनक महाराज विश्वामित्र मुनि के चरण स्पर्श करते हैं और विश्वामित्र मुनि को पूछते हैं, निमंत्रण देते हैं एक्चुअली, कि वो एक शिव का शिव धनुष का जो यज्ञ है 12 दिन का एक यज्ञ कर रहे हैं। तो जनक महाराज विश्वामित्र मुनि को पूछते हैं कि आप इस यज्ञ के लिए आप रुकेंगे क्या, 12 दिन यहाँ पे मिथिला में आप निवास करेंगे? तो विश्वामित्र मुनि तुरंत मान लेते हैं और उसके बाद जनक वो राम लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, तो विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को जनक के साथ पहचान कराते हैं, कहते हैं कि ये दोनों जो है दशरथ महाराज के पुत्र है। तो जैसे ही राम लक्ष्मण का पहचान होता है दशरथ महाराज के पुत्र है, कहते हैं जनक महाराज बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जनक महाराज जो है दशरथ महाराज के पुत्र कामेश्वरी यज्ञ में गए थे और उन्होंने उस यज्ञ का सफलता देखा था और उन्होंने ये भी देखा था कि वहां पे उस यज्ञ कुंड से विशाल व्यक्ति प्रकट हुए जो प्रजापति है, और उन्होंने एक अमृत का कलश जो है दशरथ महाराज के हाथ में दिया हुआ था, उतना तक देखा और उसके बाद दशरथ महाराज को उस अमृत को बांटते हुए देखा अपने पुत्रियों और पत्नियों के बीच में। लेकिन उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि 4 पुत्र का जन्म हुआ है लेकिन कभी पुत्रों को नहीं देखा। यहाँ पे साक्षात राम और लक्ष्मण खड़े थे तो जनक महाराज बहुत प्रभावित हो गए थे, ये दोनों इतने बड़े हो गए। तो उसके बाद वहां पे सतानंद ऋषि खड़े हैं जो जनक के गुरु है, इस मिथिला नगरी के गुरु है। तो जब विश्वामित्र मुनि सतानंद ऋषि को देखते हैं तो समझ में आता है कि ये जो गुरु है, जनरली ये जो हर राजा के जो गुरु है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं राजा के सोच विचारों को विरोध करने के लिए। तो विश्वामित्र को मालूम पड़ता है कि राम का शादी कराना है सीता के साथ तो पहले सतानंद ऋषि को पढ़ाना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं कि राम लक्ष्मण के बारे में, राम के बारे में गुणगान करते हैं, वो कहने लगते हैं कि ये राम है, इन्होंने मारीच और सुबाहु का वध किया। सतानंद ऋषि का चेहरा देखते हैं विश्वामित्र को, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्या मारे सुबाहु मार दिया तो क्या बड़ी बात है। तो उसके बाद विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि इन्होंने ताटका को भी मार दिया। सतानंद ऋषि के चेहरे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, विश्वामित्र मुनि भी परेशान है, वे मारे सुबह ताटका को मारा इतना बड़ा इतनी बड़ी बात है और सतानंद ऋषि के चेहरे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अंत में विश्वामित्र मुनि ने कहा राम ने अहल्या को वापस पुनः जीवित किया है, पत्थर से उन्होंने वापस उनको पुनः अपना जीवन दिया हुआ है। जैसे ही सतानंद ऋषि ने सुना कि राम ने अहल्या को उद्धार किया है, सतानंद ऋषि कूद पड़े उनको यकीन नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा सही में राम ने किया क्या? तो विश्वामित्र मुनि को समझ में नहीं आया, ताटका को मारा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, मारेश को मारा उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अहल्या का उद्धार किया तो इतना फर्क क्या पड़ा? पता चलता है कि सतानंद ऋषि को इतना फर्क क्यों पड़ा अहल्या के उद्धार से, क्योंकि सतानंद ऋषि जो थे अहल्या के पुत्र थे। अहल्या जो है सतानंद ऋषि और सतानंद ऋषि जो है अहल्या और गौतम के पुत्र है, और उन्होंने इतने साल तक अपने माता को एक पत्थर के रूप में देखा है, पत्थर का पूजा किया है, अपने माता का पूजा किया, इतने शक्तिशाली संत है, साधु है, लेकिन वो अपनी माता को उद्धार नहीं करवाए। और यहाँ पे राम ने वो कर दिया जो बड़े बड़े लोग नहीं करवाए, तो इसलिए वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। जो महान लोग होते हैं आप दूसरों के पराक्रम से प्रभावित नहीं होते, आप जितना भी शक्ति का प्रदर्शन करो उससे उनको प्रभावित नहीं कर सकते हो। उनको प्रभावित करना है तो एक ही तरीका है, वो है अनुकंपा, कंपैशन। महान व्यक्ति के हृदय को छूना है तो अपना शक्ति का प्रदर्शन मत करो, अपनी कृपा का प्रदर्शन करो, तो उससे महान व्यक्ति ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो विश्वामित्र मुनि सतानंद ऋषि को प्रसन्न कर पाए, राम लक्ष्मण के बारे में कुछ अच्छा बता पाए, तो सतानंद ऋषि और जनक महाराज जो है राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि को अपने राजमहल राज दरबार में बुलाते हैं अगले दिन। और अगले दिन जो है जैसे ही राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि राज दरबार में प्रवेश करते हैं, विश्वामित्र मुनि जनक महाराज को कहते हैं इन दोनों को शिव धनुष देखना है, क्या आप शिव धनुष दिखा सकते हैं इन दोनों को? तो जनक महाराज कहते हैं शिव धनुष को दिखाने से पहले मैं आपको शिव धनुष के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी चीज को देखने से पहले उसके बारे में सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं उस चीज के बारे में या वो व्यक्ति के बारे में, आपको उस चीज का या उस व्यक्ति का जो सही में योगदान है शक्ति है समझ में नहीं आया। तो जनक महाराज ने कहा मैं उस शिव धनुष की कहानी बताऊंगा पहले। तो कहते हैं कि एक बार विश्वकर्मा ने दो बाण की तैयारी की थी, एक बाण को उन्होंने शिवजी को दिया और दूसरे बाण को उन्होंने विष्णु को दे दिया। शिवजी जो है ये बाण का इस्तेमाल बहुत बार करते हैं और त्रिपुरा के साथ जो युद्ध होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। और अंत में उस समय जब ये दोनों बाण विष्णु और शिवजी के बीच में होता है तो सारे देवता जो है सोचने लगते हैं इन दोनों बाणों में शक्तिशाली कौन सा बाण होगा, और आगे सोचते हैं कि शिव और विष्णु के बीच में झगड़ा हो गया तो कौन जीतेगा। तो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में आप झगड़ा कर सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई आप लोग ज्यादा सोचो मत, आपके इन दोनों के बीच में झगड़ा करोगे नुकसान आपका ही होगा। तो सारे देवतागण हमको देखना है झगड़ा देखना। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा उत्साह होना भी एक बहुत बड़ा समस्या है, ज्यादा उत्साह जब होते हैं दो लोगों के बीच में चोरी करते हैं युद्ध कराते हैं। तो रमन ने कहा ठीक है आपको ये चाहिए तो एक करूंगा। शिवजी और विष्णु के बीच में युद्ध शुरू हो गया और जब युद्ध की शुरुआत हुई इतने तीव्रता से युद्ध हुआ कि एक समय आया कि विष्णु ने इतना जोर से चिल्लाया कि सारे देवतागण उनके कान फट गए। तो अंत में सब भागे गए ब्रह्मा जी के पास, कहा प्लीज युद्ध रोक दो। ब्रह्मा जी का पहले ही बात बताया था आपको, तो ब्रह्मा जी गए दोनों के पास और उनसे प्रार्थना किया कि आप युद्ध समाप्त कीजिए। दोनों ने तुरंत मान लिया और युद्ध समाप्त हो गया। उस समय शिव जी जो है अपना जो धनुष है वो एक देवता को दे देते हैं और देवतागण जो है नीचे एक राजा जिसका नाम है देवव्रत उनको देते हैं। और ये जो देवव्रत है ईश्वर के वंश में आते हैं और नीचे जनक महाराज के वंश में आते हैं और नीचे आके अल्टीमेटली ये जो धनुष है जनक के पास आ जाता है और जो विष्णु का जो धनुष है वो परशुराम के पास चला जाता है। तो वो अलग बात है। तो जब ये धनुष
जनक महाराज की बात आ जाता है तो जनक महाराज कहते हैं जिस समय से ये जो हमारे वंश में आया हुआ है धनुष है उस समय से हम इस धनुष का वर्षित कर रहे आराधना कर रहे हैं रोज पूजा कर रहे हैं रोज यज्ञ कर रहे हैं। कहने की बात यह है कि शिवजी के पास ये धनुष जब तक था उसका इस्तेमाल होता था लेकिन जब से ये धनुष जो है देवताओं के पास से राजाओं के पास आया इसका इस्तेमाल नहीं होता है सिर्फ पूजा होता है। वैसे ही हमारे पास भी बहुत सारे वैल्यूबल चीजें हैं जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते उसका क्या करते हैं पूजा करते हैं। जैसे बहुत बार हम लोगों के घरों में जाते हैं हम देखते हैं भगवदगीता को छुआ भी नहीं प्लास्टिक कवर में डाल कर रखा हुआ है तो हम पूछते हैं भगवदगीता को छुआ भी नहीं है लोग बोलते हैं भगवदगीता एसिड इज उसको एसिड इज रखते हैं तो मतलब ये नया मतलब निकाला लोगों ने भगवदगीता एसिड इज कहा है जैसे खरीदा वैसे ही रखा क्यों भगवदगीता कृष्ण कहते हैं कि उनकी जो आराधना है भगवान की जो वर्शिप है किससे करना चाहिए अपनी बुद्धि से। जब भगवदगीता का रचना करते हैं भगवदगीता का पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं भगवान की आराधना कर रहे हैं लेकिन क्योंकि लोग वो नहीं कर पाते क्या करते हैं उसकी पूजा करते हैं तो इसे यहाँ पे जनक महाराज उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे धनुष का उसका पूजा चल रहा है इधर। तो जनक महाराज कहते हैं अभी हमने जनक इसका शिव जी की धनुष का कहानी बताया अभी हम धनुष को लेके आएंगे तो अपने सैनिकों को कहते हैं कि आप धनुष को लेके आओ। जैसे ही जनक महाराज कहते हैं धनुष को लेके आओ 5000 सैनिक जाते हैं धनुष लाने के लिए एक नहीं दो नहीं 5000 और इतना विशाल धनुष है वो एक दूसरे जगह रखा गया है और उस धनुष को लाने के लिए 500 जो है इतने विशाल बैल है जो धनुष के जिसके ऊपर रखा हुआ है उसको खींच रहे हैं और 5000 सैनिक जो है धक्का मार रहे हैं इतने मेहनत के बाद वो धनुष जो है अंदर प्रवेश करता है। लोग जब धनुष को देखते हैं मिथिलावासी जब धनुष को देखते हैं अलग अलग लोग अलग अलग चीज कहते हैं कोई कहता है ये धनुष नहीं है ये एक्चुअली रेनबो है जो आसमान में होता है ना रेनबो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में इंद्रधनुष है जो जमीन पे गिर गया है और धनुष बन गया है। कोई और कहता है ये धनुष नहीं है महेंद्र पर्वत है दूसरा कहता है महेंद्र पर्वत नहीं मेरु पर्वत है तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज कहते हैं धनुष के बारे में। अंत में जब धनुष अंदर पहुंच जाता है तो जनक महाराज कहते हैं राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि को कि मैंने इस धनुष को के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्वयंवर रखा हुआ है कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठा पाएगा उस व्यक्ति के साथ मैं अपनी पुत्री सीता देवी का विवाह करूंगा। तो जैसे ही जनक महाराज ये कहते हैं सारे जो मिथिलावासी है वो एक दूसरे के साथ चर्चा करने लगते हैं कहने लगते हैं हमारा राजा तो बड़ा मूर्ख है क्यों क्योंकि इतने सारे राजा इतने सारे जो लोग है आ चुके हैं और इस धनुष को उठाने की कोशिश कर चुके हैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इस धनुष को उठा पाए। सारे मिथिलावासी कह रहे हैं कैसा मूर्ख है हमारा राजा बेटी का शादी कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता है इतना विशाल धनुष को उठाए कौन सीता देवी जो है वो रह जाएगी उसका शादी हुआ ही नहीं कौन उठाने वाला है कैसा अलग अलग लोग बातचीत करने लगे। लेकिन जनक महाराज को अंदर ही अंदर मालूम था वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब सीता देवी छोटी सी बालिका थी तो एक बार अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी घर के आंगन में और जब वो खेल रही थी गेंद के साथ वो गेंद जो है धनुष का जो पेटी है इतना बड़ा पेटी उसके नीचे चला गया और उस गेंद को उठाने के लिए सीता देवी ने क्या किया अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और गेंद को निकाल के धनुष को डाल दिया। वहां के सारे सैनिक जो है सब मूर्छित रह गए तो 5000 लोग मर मर के उठा रहे हैं धनुष को यहाँ पे इतनी छोटी सी लड़की उठा के फेंक भी दे। तो जब जनक महाराज को कहानी पता चला उन्होंने पहले तो ये कहानी को बैन कर दिया किसी को बताने के लिए क्यों क्योंकि सोचो अभी सीता देवी इतनी शक्तिशाली है तो उसका पति इतना शक्तिशाली होना चाहिए एक इतनी आसानी से उठा रही है धनुष को
तो एटलीस्ट उसका जो पति है एक बार तो जीवन उठाए धनुष को, उतना तो शक्ति होना चाहिए। तो आप सोचो एक एकदम रुखे आदमी के साथ सीता देवी का शादी हो गया और उसको आलिंगन करने के लिए सीता देवी गई, वो तो मर जाएगा। तो इसलिए जन्म महाराज ने इतना बड़ा कंडीशन रखा हुआ था उस धनुष के, उस सीता देवी की शादी के लिए। अनफॉर्चुनेटली जन्म महाराज जो है ये कहानी किसी और को बता नहीं पाए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कुछ कारण होता है जिसकी वजह से हम कुछ चीजें करते हैं, लेकिन उस कारण को हम किसी को बता नहीं पाते। लोग हमारे ऊपर संदेह करते हैं, लोग हमारे ऊपर लालचन लगाते हैं, बोलते हैं ऐसा कैसा व्यक्ति है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक कहानी है जो बता नहीं पाते लोगों को। जनक महाराज के पास भी एक कहानी था जो लोगों को बता नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो किसी को बता नहीं पा रहे थे, उन्होंने एक चीज का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सहारा लिया, वो है प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना रोज कर रहे थे कि मैं जो ये डिसीजन लिया हूँ, ये जो निर्णय लिया हूँ सीता देवी को शादी के मामले में, वो निर्णय जो है सही हो, प्रार्थना कर रहे थे रोज। जब यहाँ पे राम को उन्होंने देखा, उनको लगा कि ये व्यक्ति जो है आज धनुष जरूर उठा लेंगे, तो जनक महाराज विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण को देख के कहते हैं अगर राम ने इस धनुष को उठा लिया, सीता देवी का शादी जो है मैं राम से कराऊंगा। ये आचार्य जो हमारे हैं, ये जो शब्द जनक महाराज का है अगर, इफ इंग्लिश में इफ बोलते हैं, हिंदी में अगर, ये जो अगर शब्द का इस्तेमाल किया वो बहुत बड़ा गलती किया होता है। मतलब आप सोचो जनक महाराज के मन में अभी भी डाउट है कि उठा पाएंगे कि नहीं, इफ बोलते हैं If Ram lives this, then I'll marry Sita Devi. तो जब भगवान के सामने इफ थोड़ी बोलते हैं, भगवान के जब सामने जब आते हैं तो वहां पे इफ और बट नहीं होता है, कंफर्म्ड है। लेकिन जनक महाराज के मन में इतनी शंका थी क्योंकि इतने सारे लोग आ चुके हैं पहले और उठाने की कोशिश कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं, कि उनके मन में शंका है कि यदि ये भी फेल हो गए तो क्या होगा। तो कभी कभी हम बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे मन में बहुत सारा नेगेटिविटी हो जाता है, तो हम भगवान पे आ गए तो वो बोलते हैं इफ। जैसे रुद्रासुर की कहानी आती है भागवत में, भगवान जो है विष्णु इंद्र को एक वज्र देते हैं और वो जो वज्र है दधीचि मुनि के बोन या हड्डियों से बना हुआ वज्र है, और उतना ही विष्णु ने उस वज्र को पूरी तरह से ताकत दिया हुआ है, इस वजह से आप जाके रुद्रासुर को मारो। तो इंद्रदेव जाते हैं रुद्रासुर को मारने के लिए और जब रुद्रासुर के सामने पहुंचते हैं, रुद्रासुर इतने विशाल है कि इंद्र जो है पहले उनकी गदा है उनके हाथ में गदा फेंकते हैं रुद्रासुर की तरफ। तो रुद्रासुर क्या करता है, वो गदा को पकड़ लेता है और वापस इंद्र के ऊपर फेंक देता है और इंद्र के ऐरावत को गदा जो लगता है दूर चला जाता है ऐरावत। उसके बाद इंद्र का कॉन्फिडेंस चला जाता है, उसके हाथ में वज्र है लेकिन वो सोच रहा है अभी फेंकू कि नहीं फेंकू। तो सोचता है, इंद्र सोच रहा है अभी इसको भी फेंका और मुझे वापस लेने पर फेंका तो मेरा क्या होगा, मैं तो गायब हो जाऊंगा। तो इंद्र का कॉन्फिडेंस चला गया वज्र के ऊपर। उस समय रुद्रासुर इंद्र को कह रहा है भाई फेंको काम होगा, have faith in God। राक्षस बोल रहा है भक्तों को। तो कभी-कभी राक्षस जो हमें यकीन दिलाते हैं कि आप चिंता मत करो, श्रद्धा रखो, जपा करो, एक दिन हो जाएगा। लेकिन जब हमें मारा करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी जब एक बार एक जगह पे है भगवान का एक इंस्टॉलेशन, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का इंस्टॉलेशन कर रहे थे, तो वहां पे भक्त जो है सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे थे, जो भी प्रभुपाद आदेश दे रहे उसका उल्टा ही कर रहे थे लोग। प्रभुपाद ने कहा पुष्प लेके आओ, इन लोगों ने पुष्प की जगह पे पुष्पन्न सुन लिया, चावल लेके आए पुष्पन्न। प्रभुपाद ने कहा जो यज्ञ कुंड है उसके इर्द गिर्द फल रखो, तो उनको लगा प्रभुपाद चाहे फ्रूट सैलेड, उन्होंने फल किधर है, फ्रूट सैलेड लेके आए प्रभुपाद के सामने। तो प्रभुपाद को इतना गुस्सा आ रहा था कि लोग एक भी चीज मुझे बोल रहा हूँ पालन नहीं कर पा रहे हैं।
अंत में यहाँ पे पूरा सब मीडिया वीडिया आ गया था और लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा था, इन्होंने सब उल्टा पलटा कर दिया। अंत में जब जब जगन्नाथ उदय सुभद्रा का जो ऑल्टर था उसके सामने एक बड़ा कैनोपी जैसा था और सबके सामने वो कैनोपी हिल रहा है और वो पूरा कैनोपी जगन्नाथ के ऊपर गिरने वाला था, प्रभुपाद ने चालान मारा और पकड़ लिया और चिल्ला चिल्ला के कहने लगे इसको उठाओ निकल जाओ, ये पूरा मीडिया कवर कर रहा है, पूरा लाइव वीडियो चल रहा है, तो मीडिया को क्या मालूम क्या कर रहा है, उनको लगा ये भी पार्ट है सेरेमनी का। तो एक आदमी था जो पूरा सबको देख रहा था, प्रभुपाद जी गुस्सा इतना गुस्सा आ रहा था, तो आदमी उठ के गया प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद तो हाथ मारा उसने और कहा चैंट हरे कृष्ण बी हैप्पी। सोचो
आध्यात्मिक मार्ग में है। तो राम जैसे विश्वामित्र ने आदेश
उनको आशीर्वाद मिलता है, राम उठा रहे थे धनुष को। जब राम धनुष को उठा रहे हैं, सारे मिथिलावासी जो है राम की तरफ ही देख रहे हैं, और सारे मिथिलावासी जो है एक क्षण भी मिस नहीं करना चाह रहे हैं अभी जो होने वाला है, क्योंकि उनको मालूम है एक क्षण में बहुत कुछ हो सकता है। तो और एक क्षण में क्या होता है, पलकी झपकते हैं, वो पलकी झपकने में बीच में कुछ हो गया तो मिस हो जाएगा, है कि नहीं। तो सारे मिथिलावासी अपने आप को ऐसा खोल के देखने बैठे रहते हैं, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और सबके सामने भगवान जो है धनुष को इस तरह उठा लेते हैं, इतने आसानी से उठा लेते हैं जैसे हाथी एक कमल को उठाता है। अब ये हाथी कमल को उठाने के लिए कितना शक्ति डाला होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो इतने आसानी से उठा लेते हैं भगवान और जमीन को, जमीन पर रखते हैं और धनुष को बांधने की कोशिश करते हैं, जैसे बांध रहे हैं बीच में धनुष टूट जाता है और इतना विशाल विस्फोट होता है जब धनुष टूटता है कि सबके आंख कान फट जाते हैं, प्रैक्टिकली सब लोग जो है जमीन पे गिर जाते हैं सिवाय तीन चार लोगों के, विश्वामित्र मुनि, शतानंद ऋषि, जनक महाराज, राम लक्ष्मण को छोड़ के बाकी सब गिर जाते हैं जमीन पे। जनक महाराज कूदते हैं और चिल्लाने लगते हैं सीता को बुलाओ भाई। इतने समय के बाद एक व्यक्ति आया जो धनुष को उठा लिया, लेकिन तो सारे सीता देवी के जो दोस्त हैं वो जाते हैं सीता देवी को बुला के लेके आते हैं। सीता देवी नीचे आ रही है अपने वरमाला को हाथ में उठाते हुए, और जब नीचे सीता देवी पहुंच जाती है राम कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, कहते हैं जब तक दशरथ महाराज का परमिशन नहीं है तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। कहते मैं यहाँ पे आया विश्वामित्र यज्ञों को बचाने के लिए, शादी करने के लिए नहीं आया। तो सोचो जनक महाराज का क्या हालत है, अभी पहले एक व्यक्ति आया तो धनुष उठा सके, उठा लिया और धनुष टूट भी गया, अभी अब दूसरा व्यक्ति उठा नहीं सकता है, चांस भी गया। अभी बोल रहे जो उठाया वो बोल रहे कि मैं नहीं शादी करूंगा। तो जनक महाराज इतने विचलित हो गए, भाग के गए विश्वामित्र मुनि के पास और कहने लगे विश्वामित्र मुनि को चल गया रहे इधर, अभी मेरा क्या होगा। विश्वामित्र मुनि कहते हैं आप चिंता मत करो, कहते हैं राम ने ये नहीं कहा कि शादी बिल्कुल नहीं होगी, राम ने इतना ही कहा जब तक दशरथ महाराज आदेश परमिशन नहीं देते तब तक नहीं करूंगा, आसान है दशरथ महाराज को कन्विंस करो हो जाएगा शादी। तो उसके बाद विश्वामित्र मुनि ने जनक महाराज दशरथ महाराज को भेजते हैं, अपने संदेश को भेजते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि समय भाग रहा है। तो दशरथ महाराज को एक संदेश भेजते हैं और संदेश बाबा को बताते हैं दशरथ महाराज को ये नहीं बताओ कि शादी हो रहा है, उनको इतना तक सिर्फ इतना बताओ कि राम लक्ष्मण मिथिला पहुंच गए हैं और वहां पे उन्होंने बहुत कार्य अलग अलग कार्य किए, मारी सुबह को मारा, काटका को मारा है और धनुष को भी तोड़ दिया है, और ये कहो कि प्रस्ताव है कि शादी हो सकता है। तो दशरथ महाराज वशिष्ठ को देख के, जैसे वशिष्ठ ने अग्री किया तो तुरंत दशरथ महाराज ने सबको कह दिया कि शादी होगा। तो सारे अयोध्यावासियों को लेके मिथिला तक पहुंच जाते दशरथ महाराज। पता चलता है कि इतना विशाल सेना था दशरथ महाराज का, इतने सारे लोग अयोध्या से मिथिला पहुंच जा रहे थे कि कम्मू मुनि कहते हैं जब दशरथ महाराज पहला व्यक्ति अयोध्या पहुंचता, मिथिला पहुंचता है अयोध्या से, आखिरी व्यक्ति जो है वो भी अयोध्या में ही है। इतना बड़ा लाइन है, इतने सारे लोग शादी के लिए आ रहे हैं। अंत में दशरथ और जनक महाराज मिल लेते हैं। दशरथ महाराज जो है सूर्य वंश के राजा है, जनक महाराज जो है चंद्र वंश के राजा है, और पहली बार धरती में सूर्य और चंद्र का मिलन हो रहा है। और शादी का मुहूर्त शुरू होने वाला था, उससे पहले विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि जो है एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर आप विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि का जो रिश्ता है उसके बारे में पता चलेगा तो आपको एक टॉम एंड जेरी से भी बदतर है। आज के तारे का टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, वो पुराने जमाने में वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि के बीच में होता था, एक दूसरे को मारने में थोड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से बातचीत कर रहे हैं। कैसे संभव, कैसे है जो दो दुश्मन है एक दूसरे से प्रेम से बातचीत कर सकते हैं। ये भगवान का बीच में होने का शक्ति है, दो ईंट जो है उसके बीच में सीमेंट जब होता है तो दोनों ईंट संबंध कुछ नहीं है, जुड़ जाते हैं। तो वशिष्ठों में विश्वामित्र मुनि एक प्रस्ताव रखते हैं जनक और दशरथ महाराज को कि यहाँ पे एक शादी की जगह पे चुनक चार शादी हो जाए, और कहते हैं कि सीता देवी की शादी राम के साथ होगा, लक्ष्मण के साथ योमिला के साथ होगा जो सीता की बहन है, और भरत और शत्रुघ्न की शादी जो है मांडवी और शत्रुघ्न के साथ होगा जो सीता के कजन सिस्टर्स है। तो जनक महाराज दशरथ महाराज और कुशध्वज जो है जनक के भाई सब मान लेते हैं और चारों शादी एक साथ हो रहा है। जब चारों शादी एक साथ हो रहा है तो शादी के मंडप में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जनक महाराज राम का जो हाथ है सीता के हाथ के नीचे रखते हैं। जनरली क्या होता है कि वर का हाथ जो है कन्या के हाथ के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ राम और सीता की शादी में राम का हाथ सीता के हाथ के नीचे होता है। तो जनक महाराज ये बता रहे हैं कि अभी से राम जो है सीता के देखभाल में है। क्यों? क्योंकि राम भगवान है लेकिन सीता देवी जो है उनकी अंतरंग शक्ति है। चरण महाराज अलग अलग शब्दों से सीता देवी का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि ये धर्मचारिणी तव है। धर्मचारिणी तव मतलब है जब तक राम जो है धर्म के मार्ग में चलेंगे सीता देवी जो है चुपचाप उनके पीछे चलेंगी, लेकिन जैसे ही राम जो है धर्म के मार्ग से थोड़ा सा भी हट जाते हैं सीता देवी तुरंत उनको बताती है उन्होंने गलती किया है। रामायण में देखते हैं बहुत बार सीता देवी राम की गलतियां बताती है, लेकिन क्यों बता रही है? क्योंकि राम को हमेशा धर्म के मार्ग में चलते हुए देखना चाहती है। जनक महाराज कहते हैं कि सीता देवी जो है एक शैडो के समान है। शैडो या छाया जो है व्यक्ति के चरण से कनेक्टेड होता है, चरण से संबंध रखता है, लेकिन जब सूरज सामने रहता है आदमी का परछाई जो है पीछे रहता है, लेकिन जब सूरज पीछे जाता है आदमी का परछाई सामने आता है। जनक महाराज राम को कहते हैं सीता देवी जो है आपकी परछाई की तरह रहेगी। तो मतलब सूरज सामने रहेगा मतलब क्या है, आपके जीवन में जब प्रगति हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, सूरज सामने है तो सीता देवी चुपचाप आपके पीछे रहेगी, लेकिन जब आपके आपके जीवन में सूरज पीछे जा रहा है मतलब आपके जीवन में नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो सीता देवी सामने आएगी। तो जनक महाराज सीता देवी के बारे में ऐसा अलग अलग चीज कहते हैं, और राम को सीता देवी को सम देते हैं। तो राम कहते हैं, राम उसी समय उन्होंने वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जीवन में एक पत्नी व्रत ले रहा हूं, मतलब किसी और के साथ शादी नहीं करूंगा। जैसे अयोध्यावासी अयोध्या की सारी स्त्रियां जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक वो सुनते हैं राम का प्रतिज्ञा, सब खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पिछला राजा है जनक दशरथ महाराज जो है उनकी बहुत सारे पत्नियां थी, तो इसलिए प्रजा जो है उनकी भी बहुत सारे पत्नियां होती थी, लेकिन अगर नया राजा होने वाला है उनकी एक ही पत्नी होगी तो प्रजा को भी जबरदस्ती एक ही पत्नी रखना पड़ेगा। सारे अयोध्यावासी खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है राम लक्ष्मण सीता राम सीता का शादी होने वाला है, तो सारे अयोध्यावासी और मिथिलावासी जो है राम और सीता को देख रहे हैं, तो सब लोग जो है अपने आंखों से दोनों का दर्शन ले रहे हैं और उनकी आंखें जो है युद्ध करने लगती है एक दूसरे के साथ। एक आंख जो है सीता देवी को देख रहे हैं, दूसरा आंख जो है राम को देख रहा है, लेकिन वो आंख जो है सीता को भी देखना चाहता है, दूसरा आंख जो है राम को भी देखना चाहता है। दोनों आंखों के बीच में युद्ध हो रहा है, वो इतने थक जाते हैं कि दोनों आंखों को बंद कर देते हैं। जैसे दोनों आंखों को बंद करते हैं आंख के अंदर भी उनको सीता राम का दर्शन होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि राम के पास कम से कम 1000 नेत्र होने चाहिए सीता का सही में दर्शन करने के लिए, और कुछ लोग कहते हैं सीता के पास कम से कम 1000 दर्शन नेत्र होने चाहिए राम का सही में दर्शन करने के लिए, और कुछ लोग कहते हैं सीता के पास हर क्षण जो है 1000 नेत्र और आने चाहिए क्योंकि राम का जो सुंदरता है बढ़ते जा रहा है। ऐसे ऐसे अलग अलग लोग वर्णन करते हैं और यहाँ पे सीता राम का शादी होने वाला ही है। वर्णन आता है कि भगवान का नाम है अपर्यामृत। अपर्यामृत का लोग हैं जिनकी जो सुंदरता है बढ़ती जाती है। भगवान का कोई भी आप रूप देख लो, कोई भी अर्चक वगैरह देख लो, उनकी सुंदरता जो है समय के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन हमारी सुंदरता जो है समय के साथ ढकती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए आजकल सब लोग सेल्फी लेते रहते हैं कल क्या हो पता नहीं, आज फोटो निकाल के रख लो। तो भगवान जो है अपरिहार्य होता है। तो जब राम और सीता सामने आ जाते एक दूसरे के, तो राम जो है सीता देवी के ऊपर अपना वरमाला डाल देते हैं, और अभी सीता देवी राम के की गले में वरमाला डालना चाहती है। जैसे डालने की कोशिश कर रही है उनको समझ में आता है कि राम जो बहुत ही ऊंचे हैं और सीता देवी जो है थोड़ा कम है, तो वो डाल नहीं पा रही थी और राम झुकने रहे, राम जी के सामने झुकते नहीं है। तो लक्ष्मण समझ में आ गया यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो लक्ष्मण आया था बीच में, क्या करते लक्ष्मण, लक्ष्मण जो है तुरंत राम के चरणों में गिर जाते हैं, और जैसे राम के चरणों में लक्ष्मण गिरते हैं, राम झुकते हैं लक्ष्मण को उठाने के लिए, उतने में सीता देवी जो है मार डाल देती है। वैसे सीता राम का शादी हो जाता है। तो विश्वामित्र मुनि जो है जो सीता राम को विवाह को संपन्न करने में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया उन्होंने, इस समय के बाद शादी के बाद जो है विश्वामित्र मुनि हिमालय की तरफ चले जाते हैं, मार्ग की तरफ चले जाते हैं, और वो वापस रामायण में तो जाते नहीं है। विश्वामित्र का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है रामायण में। वो एक गुरु के समान है जो जीवात्मा और भगवान को साथ में लेके आते हैं, और जब जीवात्मा और भगवान को साथ में लेके आते हैं गुरु जो है हट जाते हैं, बीच में से निकल जाते हैं, क्योंकि उनका रोल जो है दोनों को सामने एक दूसरे के पास लाना है। विश्वामित्र मुनि जो है इस बाल कांड के प्रमुख व्यक्ति है, हर कांड में एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं, बाल कांड का जो प्रमुख व्यक्ति है विश्वामित्र मुनि है। बताया जाता है कि जनरली बहुत लोग सोचते हैं कि बाल कांड का मतलब राम का बचपन, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे बाल कांड में हार्डली राम के बचपन के बारे में वर्णन है, लेकिन ये बचपन किसका है, विश्वामित्र मुनि के भक्ति का बचपन है। और पूरा जो राम बाल कांड है, कभी और हम चर्चा करेंगे इस बारे में, कैसे विश्वामित्र मुनि जैसे राम को लेके जाते हैं अयोध्या से, उनकी भक्ति की शुरुआत होती है, उनकी भक्ति की बचपन की शुरुआत होती है। और जब राम और शादी सीता का शादी होता है, तो उस समय जो है विश्वामित्र मुनि की भक्ति का परिपक्वता पहुंच जाता है। उसके बीच में एक साथ अलग अलग कहानियां आती है जिससे विश्वामित्र मुनि का जो भक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसको एक चैप्टर है जिसका नाम है सेवन लॉज ऑफ प्रोग्रेसिव लिविंग। हर चीज से विश्वामित्र मुनि एक और चीज सीखते हैं और भगवान को अपने एक एक शक्तियों को अर्पण करते हैं, और करते हुए अंत में राम और सीता का जब शादी कराते हैं तो वो जो है उनका उत्तम सीमा है भक्ति का। इसके बाद जो है विश्वामित्र मुनि अपना जीवन को परफेक्ट करके नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं, और यहाँ पे बालकांड की अंत होती है। हरे कृष्ण।
Yes, please.
Thank you so much for the lecture. So I have one question from Ramayana in general, if you don't mind if I can ask. Ram, the word means reservoir of pleasure, yet Ramayana is full of tragedy. So why is it so?
I don't mind understanding Ramayana. I have only simple understanding of all the three books. Ramayana is to teach us how to lead in this world. Mahabharata is to teach us how to live in this world. And Bhagavata is to teach us how to lead in this world. So Ramayana is a book of leadership. In my understanding, this is how leadership is. Leadership means responsibility. Responsibility means sacrifice. Sacrifice means crying. The place where a leader is happy, followers are crying. And a place where followers are happy, leader is crying. Ramayana is a book of crying. So the rasa that is prominent in Ramayana is called as Kalpa Rasa. That's the prominent rasa in Ramayana. If you read the Ramayana and you don't cry, then you have not read the Ramayana. You have to cry. In the Ramayana, everyone is crying. Ramayana Ram is crying, Sita is crying, Mathura is crying, Kali is crying, Dashrath is crying, Kaushalya is crying, everyone of Rama is only crying. Because it's a guru leadership, and leadership means sacrifice, sacrifice means yes. That's my understanding.
प्रभु एक जिज्ञासा है, आपने कहा कि जनक जी राम जी के धनुष तोड़ने के संबंध में शंका में थे, जबकि वो विदेहराज थे, उनको विदेहराज कहा जाता है, जिनको देह का कोई भी प्रभाव न हो, जिस पर उनको कहीं कोई शंका नहीं थी, ये शास्त्र सम्मत बात है। भगवान को वो प्रथम दर्शन के समय आश्चर्य से कि मैं किनको देख रहा हूं, क्या विष्णु स्वयं उतर के आ गए, ये उनके भाव थे। उनके भाव शास्त्र सम्मत के अनुसार नहीं है कि उन्होंने कभी कोई शंका की कि भगवान राम तोड़ पाएंगे या नहीं, या भगवान राम विष्णु के साक्षात स्वरूप हैं या नहीं। वो अच्छी तरह जानते थे, सतानंद जी भी अच्छी तरह जानते थे कि ये परम ब्रह्म परमात्मा का ही अवतार है, और ये अवतार लेके अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ आए हैं और उसी का वर्णन करेंगे। तो कृपा से मैं आपको यही पूछना चाहता हूं कि आपने शंकर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
क्योंकि जब हम कहानी कहते हैं, कोई भी कहानी कहते हैं,
पहली बात तो प्रभु एक विनय है आपसे, ये कहानी नहीं है, ये भगवान की पावन लीला है, जो उन्होंने त्रेता युग में भक्तों के उद्धार के लिए मर्यादा में रहकर की। तो इसे कहानी कभी अगर न कहें तो बड़ा कार होगा, ये भगवान की बहुत बड़ी पावन लीला, परम पावन लीला, जिसके ऊपर कोई लीला नहीं है मर्यादा में रहकर, तो इसे कहानी कहते हैं तो जरा तकलीफ होती
है। तो मैं
जरूर कहिए,
आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, उसमें एक लेश की गलती नहीं है। तो मैंने जो कहा है, जब कुछ बता रहे हैं हम, कोई भी लीला बता रहे हैं, तो लीला को बताने का एक तरीका होता है, तो उसका एक बिल्डअप करने का एक तरीका होता है। तो जब बोलते वक्त कोई भी लीला को दो स्तर पे देखा जाता है, लीला के स्तर पे देखेंगे जो सबसे उत्तम स्तर है, उस स्तर पे देखेंगे तो उस लीला से कुछ भी सीखने का संभावना है नहीं, क्योंकि लीला में सब कुछ परफेक्ट ही हो रहा है, लीला में सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट
निश्चित होता है।
लेकिन जब हम मानव स्तर पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लीला से हम क्या सीख सकते हैं, तो उससे हम थोड़ा सा एक लेश मात्र सीख समझने की कोशिश करते हैं, तब हम हमारे पास एक परमिशन है कहानी बताने का, सॉरी लीला बताने का तरीका होता है, जिससे हम कुछ सीख पाते हैं। उस उद्देश्य में बताया आपके आपके विश्वास को या आपके जो प्रेम है उसको,
मेरा भगवान राम के प्रति अलग भाव है।
हाँ, तो मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गलती,
मैं माफी के लिए नहीं कहा आपसे, भगवान की पावन लीला आपके मुखारबिंद से आपने कहने का प्रयास किया, ये हम लोगों का सौभाग्य है, पर भगवान की पावन लीला रोचक कथा नहीं है, वो बहुत ही मर्यादित और बहुत ऊंची भगवान की पावन लीला है, उसका गुणगान भगवान शंकर ने किया है, प्रथम किया है, और माँ पार्वती से किया है, तो उसकी लीला अनुपम है, सोचने के साथ कल्याण
होता है। हमारा भी उद्देश्य इतना ही है कि भगवान की लीलाओं को दुनिया तक पहुंचाने का, बस हम यही कोशिश कर
रहे हैं। जैसे मेंशन है कमल लीला,
कुछ
नहीं सिर्फ कमल रामायण
दैट डाउट थिंग,
सो आई थिंक यू हैव टू मेंशन दैट।
No, I think he's in a different phase, so it's okay.
Right. Okay.
Hare.
Any other comment? Yeah.
Prabhuji, this is from Hanuman Narayana. This Ramayana is from what part?
Balka.
So it's from Valmiki Ramayana.
Yes, Valmiki.
We can read this part in Valmiki Ramayana. Yeah,
of course.
Okay. And where can we quote the Prabhupada incident that you mentioned? Where is that mentioned? If we were to quote, if somebody
Prabhupada incident is not mentioned in Ramayana.
No, not in Ramayana.
Yeah. Where? Yeah. I heard it from some Prabhupada.
You heard it from.
I think this happened in London.
Okay.
Happened in London, it's in Leelamrita.
It's in the Prabhupada Leelamrita.
It's available on the internet for you.
Okay.
So you see as to how Srila Prabhupada went and took the deity for installation. This was held by some Hindu society. But one of the fingers of, I think, Radharani was missing, so they did not install. Srila Prabhupada went and took it. And then, I think in the phase of installation or one of these other cases, something like this happened. Yeah. I'm not able to exactly relate where, but my nun says it is in London. You can check it out in the region. So, as I was saying before, the main Leela of Prabhuji is telling us, Valmiki Ramayana is based on the Kamba Ramayana. Kamba Ramayana pura Tamil mein hai, special Tamil language mein, and it's got an expansion on various leelas. वैसे लेते हैं तो श्रीमद् भागवतम का भी जो कुछ भी जो भगवान श्री कृष्ण या सभी जो अवतारों के जो लीला है वो एक जैसे एक like a cycle keeps coming again and again. So there are variants at different times in different Puranas. There are some variants to how the story goes. So बस आप आपके लिए जो प्रभु यू नो आपने बोले कि ऐसे जो कंब रामायण में जैसे कहावत है उसके अनुसार प्रभु बोले हैं ठीक है ये उनके खुद के शब्द से नहीं बोल रहे हैं कंब रामायण में जैसा आता है उसके अनुसार ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर इन वेरी शॉर्ट नोटिस हैप्पी दैट यू ऑल मेड इट आई एम वेरी हैप्पी आई मेड इट And so thank you very much for your life. We have one more session tomorrow. And tomorrow's session again, we will have actually three speakers. I only said two, but there's a third speaker in tomorrow's session. And that third speaker in tomorrow's session is His Grace Gaur Nithai Prabhu. Right? Tulsi bol gaya. Visa Tulsi banaya bol gaya. Okay. Tomorrow we will start sharp at 8. We will have the first session with His Grace Gaur Nithai Prabhu. Okay, after 10-15 minutes kirtan. Then we will have Subha Vilas Prabhu. Kal ka topic hai the saints of South India. Theek hai? And tomorrow's last session is from His Holiness Bhakti Anugraha Janardana Swami Maharaj. Okay? So next week we have with us His Holiness Jaya Dwaita Swami Maharaj. Today there is a very special Pulao Prashad for all of you. Before I forget and close the announcement. But there is also, for most of the Grahasthas here, I've got some very special drumstick. Moringa. What do you say in Hindi for Moringa?
Moringa.
Moringa in Hindi. I have Moringa leaf, Moringa sikki. I have Moringa leaf, Moringa drumstick, as well as flowers. So, beg, borrow, or steal. But Moringa leaves and flowers are to be given only to those who place an order for Ramayana. So, we have this special offer here today. Prabhuji's the Ramayana topics as the game of life.